From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City के Temple Square सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों की संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 150वीं अर्थवार्षिक महासम्मेलन है। इस रविवार के दोपहर का सत्र इसमें गिरजा के जनरल अधिकारियों जनरल पद अधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडलम गायक मंडली द्वारा होगा। इसका प्रसारण बॉनेवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष दीत्रा फुकडोर गिरजे के प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह की गिरजे के 150वें अर्धवार्षिक महासम्मेलन के चौथे सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं और इस दोपहर को आनंद में ईस्टर की शुभकामनाएं उन सभी को जो संसार भर में भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन जो कि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। इस सत्र का संगीत मंडप गायक मंडली द्वारा मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में होगा। बॉनी गुडलिफ और लिंडा मार्गेट्स ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली माय रिडीमर लिव्स गाकर इस सत्र का आरंभ करेगी। आरंभिक प्रार्थना सत्र के एल्डर एस गिल्फर्ड नीलसन करेंगे।
Our Heavenly Father, In reverence,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं और इस जनरल कॉन्फ्रेंस में हम आपसे प्रेम करते हैं. इस सुंदर ईस्टर दिन में हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के द्वारा. वह जीवित मसीह है और हम यह इकट्ठे होते हैं पूरे दुनिया भर से आपके भविष्यवक्ता को सुनने के लिए, और हम उनके शब्दों से इंस्पायर हुए हैं और हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए कि हम उन्हें फॉलो कर सकें. और हम अब जिन्हें भी हम सुनेंगे इस दिन में, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके प्रेम को महसूस करेंगे और पवित्र आत्मा हमें गवाही देगी ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम आपके बेटी और बेटियां बन सकें. हम आपके और प्रेम प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन.
The choir will now favor us with
गायक मंडली गाएगी He sent His Son. गाने के पश्चात हम 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर रॉबर्ट डी हिल से सुनेंगे. उनके बाद 70 के एल्डर केविन डब्ल्यू पियर्सन और रफेल ए पियनो. एल्डर पियनो अपना संदेश अपनी मातृभाषा स्पेनिश में देंगे.
This is Easter Sunday, a day of gratitude.
ये ईस्टर रविवार है, आभारी होने का और हमारे आदरणीय यीशु मसीह के प्रायश्चित और सारी मानव जाति के लिए पुनरुत्थान को याद करने का एक दिन। हम उसकी आराधना करते हैं, हमारे धर्म की आजादी के लिए, सभा की आजादी, बोलने की आजादी और हमारे परमेश्वर के लिए दिए हुए अधिकार की आजादी के लिए आभारी हूँ। जैसा भविष्यवक्ताओं ने पहले से बताया है इन अंतिम दिनों के बारे में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ बहुत सी दुविधा में हैं। हम कौन हैं और हमारे विश्वास क्या हैं? कुछ कहते हैं दोष लगाने वाले भले के बैरी हैं, अन्य जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अधियारे को उजियाला और उजियाले को अधियारा ठहराते हैं, और वे जो हमारे चारों तरफ चुनाव करते हैं कैसे हमारे भरोसे पर जवाब दें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि नैतिक आजादी परमेश्वर की योजना का उसके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भाग है। ये अंततः योजना हमें नश्वरता से पहले स्वर्ग परिषद में प्रस्तुत की गई थी। आजादी का उपहार शामिल है। उस महान परिषद में लूसीफर शैतान के रूप में जाना जाता है। उसने उसकी आजादी का इस्तेमाल परमेश्वर की योजना का विरोध करने में प्रयोग किया था। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि शैतान ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया और मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसे मुझ प्रभु परमेश्वर ने उसे दिया था। मैंने देखा कि उसे नीचे निकाल बाहर किया जाए, और एक तीसरा भाग के स्वर्ग के दूत ने मेरे सामने उसे उसके स्वतंत्र चुनाव के कारण दूर कर दिया था। परिणाम स्वरूप स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चे जिन्होंने उसकी योजना का बहिष्कार किया और लूसीफर का अनुसरण कर अपने पवित्र नियति को खो दिया। यीशु मसीह अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजिए, तेरी मर्जी पूरी हो, महिमा हमेशा तेरी हो। यीशु जिसने अपनी स्वतंत्रता का अभ्यास कर स्वर्गीय पिता की योजना का समर्थन किया, पहचान कर और पिता द्वारा नियुक्त किया गया हमारा उद्धारकर्ता, पुनः नियुक्ति के साथ हम सब के लिए अभिषिक्त बलिदान का पालन किया था। सामान्यतया हमारे आज्ञाओं का पालन कर अपनी स्वतंत्रता का अभ्यास करते हैं। क्या हम पूर्णतः समझ पाए हैं हम कौन हैं और स्वर्गीय पिता की हम सब के लिए आशीषों को प्राप्त करते हैं? शरीर को पाने को अवसर, प्रगति करना, आनंदित होने का अनुभव, एक परिवार का होना और अनंत जीवन पाना शामिल है। आज्ञाओं का पालन करना, हमें गिरजा के आधिकारिक सिद्धांतों को जानने की जरूरत है, ताकि हम मसीही मार्गदर्शन से फिर न जाएं, व्यक्तिगत लहरों के कभी न बदलने से। आशीषें हमें अभी जिसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इस जीवन से पहले हमें उद्धारकर्ता को अनुसरण करने का चुनाव किया था। हम किसी को ये शब्द सुनने या पढ़ने हैं, कोई भी क्यों न हो और उसका अतीत कैसा भी क्यों न हो, इसे याद रखो, अभी बहुत देर नहीं हुई है वही चुनाव को दोबारा से करने का, उसका अनुसरण करने को। यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा उसके प्रायश्चित में भरोसा करना, अपने पापों से पश्चाताप और बपतिस्मा लेना। हम फिर पवित्र आत्मा का दैवी उपहार लेना चाहते हैं। यह उपहार ज्ञान, बुद्धि और समझदारी प्रदान करता है, मार्गदर्शन और बल सीखने और गवाही बढ़ाने में, शक्ति और पापों को साफ कर उभरने और दुख तकलीफ में विश्वासी बने रहने में आराम और प्रोत्साहन देता है। आत्मा की ये अतुलनीय आशीषें हमारी आजादी और सामर्थ्य को बढ़ाती हैं। क्या सही है करने में, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जैसे हम इन अंतिम दिनों में आत्मिक स्वतंत्रता के रास्ते पर चलते हैं, हमें समझना चाहिए कि विश्वासी होकर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना निर्भर करता है हमारे धार्मिक आजादी पर। हम पहले से ही जानते हैं कि शैतान नहीं चाहता ये आजादी हमारी हो। उसने स्वर्ग में नैतिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश की थी, और अब धरती पर वो धार्मिक आजादी के विषय में उग्रता पूर्वक खोखला करने, विरोधी होने और उलझन फैलाने में लगा है। ये क्या है और क्यों है, हमारे आत्मिक जीवन और उद्धार के लिए जरूरी है। यहाँ पर चार कोने के पत्थर हैं धार्मिक आजादी के, जो कि हम अंतिम दिनों के संतों के रूप में उस पर निर्भर करते और सुरक्षित रहते हैं। पहला, विश्वास करने की आजादी। किसी की भी आलोचना, सताना या व्यक्तियों द्वारा आक्रमण करना या सरकार के लिए वे जो परमेश्वर के विषय में विश्वास करते हैं नहीं करना चाहिए। पहले घोषित किए गए हमारे भरोसे के विषय में धार्मिक आजादी के अधिकार हैं। कोई भी सरकार शांति में नहीं रह सकती जब तक ऐसे नियम न बनाए जाएं और अक्षत जैसे प्रत्येक व्यक्तिगत की आजादी अभ्यास का विवेक करने में सुरक्षा दें। सिविल न्यायाधीश को अपराध रोकना चाहिए, लेकिन कभी भी विवेक पर नियंत्रण या आत्मा की आजादी पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। इस मौलिक भरोसे की आजादी को यूनाइटेड नेशंस द्वारा, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अन्य राष्ट्रों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों द्वारा स्वीकार किया था। दूसरा कोने का पत्थर धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें अपने विश्वास और भरोसे को दूसरों के साथ बांटने की आजादी है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी थी, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। उसने अपने शिष्यों से भी कहा था, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, अभिभावकों से पूरे समय के प्रचारकों और सदस्य प्रचारकों के रूप में हम धार्मिक आजादी पर निर्भर कर प्रभु के सिद्धांत की शिक्षा अपने परिवारों और संसार भर में सिखाते हैं। तीसरा कोने का पत्थर धर्म स्वतंत्रता और धार्मिक संगठन बनाने की और दूसरों के साथ शांति से आराधना करने की आजादी देता है। ग्यारहवां विश्वास का अनुच्छेद घोषणा करता है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना को अपने स्वयं के विवेकानुसार करने के विशेषाधिकार का दावा करते हैं, और सभी व्यक्तियों को यही विशेषाधिकार देते हैं कि वे जैसे, जहां और जिसकी चाहे आराधना करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दस्तावेजों और बहुत से राष्ट्रों के संविधानों ने इस नियम का समर्थन किया। चौथे कोने का पत्थर धर्म स्वतंत्रता को अपने विश्वास पर जीने की आजादी है। अपने विश्वास का अभ्यास न सिर्फ घर और चैपल में, परंतु सार्वजनिक स्थानों में भी। प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि गुप्त में ही नहीं, परंतु आगे बढ़कर प्रार्थना करो, और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कुछ बुरा मान जाते हैं जबकि अपने धर्म को जनता के बीच लाते हैं। ये वही लोग हैं जो आग्रह करते हैं कि उनका दृष्टिकोण और कार्य समाज द्वारा सहा जाए। अक्सर वे धार्मिक विश्वासियों को वही समान शक्ति को देने में देरी करते हैं जो चाहते हैं कि उनका भी दृष्टिकोण और कार्य को सहा जाए। सार्वजनिक आदर में कमी धर्म दृष्टिकोण के लिए शीघ्र ही सामाजिक राजनीति में धार्मिक लोगों और संस्थापनाओं में असहनीय होकर मिल जाती है। जैसे हम बढ़ते धर्म निरपेक्ष स्तर को झुकाने के तनाव को झेलते हैं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता खो जाती है और हमारी आजादी से समझौता करना होता है। विचार हमारी जिम्मेदारियों के विषय में मॉर्मन की पुस्तक क्या सिखाती है। अल्मा की पुस्तक में हम अमलीकी को पढ़ते हैं, बड़ा धूर्त और चतुर मनुष्य जिसे लोग राजा बनाने का प्रयत्न करने लगे। इससे गिरजा के लोगों को सावधान किया। उनको राजा मुसाया द्वारा सिखाया गया था, अपनी आवाज उठाओ कि वे क्या ठीक समझते हैं। इसलिए वे ऐसा हुआ कि अधिक मतभेद और विलक्षण विवादों के कारण सारे देश में लोग अपने विचारों के अनुकूल अलग अलग दो दलों में अमलीकी के पक्ष या विपक्ष में एकत्रित हुए। इन चर्चाओं में गिरजे के सदस्य और अन्यों को एक साथ आने का अवसर मिलता है, एकता की आत्मा का अनुभव करते और पवित्र आत्मा द्वारा प्रभावित होते हैं। और ऐसा हुआ कि बहुमत अमलीकी को राजा न बनने के पक्ष में हुआ। मसीह के शिष्य होने के नाते हमारे पास एक साथ काम करने के साथ खुले दिमाग के विश्वासी होने क्या सही है के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। यद्यपि सदस्य कभी हक ने जमाएं या यहाँ तक सूचित करें कि वे गिरजा के लिए बोल रहे हैं, हम सभी आमंत्रित हैं अपनी योग्यता अनुसार नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत गवाही को दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ अपने विचारों के अनुकूल बांटने को। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा था, मैं स्वर्ग के सामने साहस से घोषणा करता हूँ कि मैं मरने को तैयार हूँ। पादरी का हक के लिए एक बपटिस या एक भले मनुष्य किसी भी संगठन का, चाहे एक मॉर्मन के लिए, सामान्य नियम के लिए जिसे अंतिम दिनों के संत के हक के पर ठोकर मारी जाए, ठोकर रोमन कैथोलिक्स के हक पर भी होगा, या किसी अन्य संगठन पर जो शायद प्रसिद्ध न हो और अपने आप को बचाव में बहुत ही कमजोर हो। ये प्रेम की स्वतंत्रता है जो मेरी आत्मा को प्रेरित करती है, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता पूरे मानव जाति के लिए। भाइयों और बहनों, हमें अपने अधिकारों और इन पवित्र आजादी की सुरक्षा और हमारी उन्नति के लिए जिम्मेदार होना है। आप और हम क्या कर सकते हैं? पहला, हम सूचित कर सकते हैं अपने समाज की समस्याओं पर जागरूक रहें जो कि धर्म की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती हैं। दूसरा, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उन अन्यों के साथ मिलें जो हमारी धर्म की आजादी को, वचनबद्धता को बांटते हैं। धर्म की स्वतंत्रता को बचाने के लिए साथ साथ काम करें। तीसरा, अपने जीवन को एक अच्छा उदाहरण बनाकर जियो जिस पर आप विश्वास करते हो, वचन और कार्य में। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है उससे जो हम अपने धर्म के विषय में कहते हैं। हमारे उद्धारकर्ता का द्वितीय आगमन निकट है, चलो इस महान कारण के लिए देर न करें। कप्तान मरोनी स्वतंत्रता का शीर्षक को शब्दों में लिखा था, अपने परमेश्वर, अपने धर्म, अपनी स्वतंत्रता, अपनी शक्ति, अपनी स्त्रियों और बच्चों की याद में। याद करो लोगों का जवाब, उनकी स्वतंत्रता का अभ्यास करने का, वे प्रतिज्ञा में अपने वस्त्रों को फाड़ते हुए आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलो नहीं भागो, भागो पवित्र आत्मा का, स्वतंत्रता द्वारा अनुसरण कर आशीषें प्राप्त करो और आजादी का अभ्यास करो परमेश्वर ने जो हमें इसकी इच्छा को करने के लिए दी है। मैं मेरी विशेष गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह ने अपनी आजादी को स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उपयोग की थी हमारे उद्धारकर्ता के लिए हम गाते हैं His precious blood he freely spilled His life he freely gave और क्योंकि उसने किया था हमारे पास अमूल्य अवसर है स्वतंत्रता और अनंत जीवन चुनने का उसके प्रायश्चित और आशीषों और सामर्थ्य के द्वारा हम आज और हमेशा से उसका अनुसरण करने का चुनाव करते हैं मैं उसके पवित्र नाम में यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं आमीन
Shortly before President Heber J. Grant passed away, one of the brethren visited.
अध्यक्ष हेबर जे ग्रांट के निधन से कुछ समय पहले एक भाई उन्हें उनसे मिलने उनके घर गए। उनके जाने से पहले अध्यक्ष ग्रांट ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे आशीष दें कि मैं अपनी गवाही को न गंवा दूं और अंत तक विश्वसनीय रहूं। लगभग वर्ष तक गिरजा के अध्यक्ष रहने के बाद भी यह उसकी उगारता से भारी प्रार्थना थी उनका उदाहरण एक आकर्षणदायक चेतनी थी कोई भी थी किसी भी उम्र में शैतान से प्रभाग में उगती थी एक सच्ची शिक्षा की विशेषता तथा स्थानीय रही रहना है परंतु जब हमारे मार्ग में परीक्षण और चुनौतियां आती हैं, हमें अक्सर केवल यह कहता है कि वहीं रहो मुझे स्पष्ट करने दो वहीं रहो सुसमाचार का सिद्धांत नहीं है अंत तक स्थायी रहने का अर्थ है निरंतर मसीह में आना और उनमें संपूर्ण होना है यदि अनंत जीवन के लिए अंत तक स्थानीय रहना आवश्यक है क्यों हम विश्वासी होने के लिए संघर्ष करते हैं हम संघर्ष तब करते हैं जब हम प्रतियोगिता प्राथमिकताओं के बीच में पकड़े जाते आस्मिक आज्ञा और निरुत्मा संकल्प हमारे विश्वास को निर्बल कर देता है अंत तक स्थायी रहने में उदारकर्ता और उनके अनुबंधों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है
Each of us experience periods of darkness and loneliness.
हम आरंभ से कहते करते हैं लेही अकेला एक अंधेरे और सुनसान शक्षे में है हम में से प्रत्येक अंधेरे और अकेलेपन के क्षण अनुसरण करता है जब जीवन में अंधेरापन हो सुनसना प्रार्थना करना ना भूलें हेबर जे ग्रांट के उदाहरण का अनुसरण करें
is the central focus in Lehi's dream. Everything points to the tree of life. The tree represents Christ, who is the clear manifestation of the love of God.
हर एक वस्तु जीवन के वृक्ष की ओर संकेत करती है वृक्ष मसीह को प्रस्तुत करता है जो हमारे परमेश्वर के प्रेम का साफ दर्शन है फल उसका असीम बलिदान है और परमेश्वर के प्रेम का सबसे भव्य सबूत अपने प्रियजनों के साथ अनंत जीवन एक मधुर और योज्य चीज के अधिक है एक भेद को एक सांस करने के लिए हमें मसीह में आना और उसमें पूर्ण होना है वह मार्ग सच और जीवन है हम अपना जीवन उपलब्धि और अच्छे कार्य से भर सकते हैं परंतु अंत में यदि हम पवित्र अनुबंधों में मसीह का अनुसरण करने और विश्वसनीय रखने में के लिए प्रवेश कर नहीं करते तो हम बिल्कुल और पूर्ण रूप से लक्ष्य से चूक गए हैं एक मार्ग है जो हमने जीवन के वृक्ष तक ले जा सकता है मसीह का विश्वास सिद्धांत है कार्य और शक्ति का निरंतर उदाहरणकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करने से आत्मिक शक्ति और सक्षमता का उत्पादन होता है बिना बलिदान और विधि और समर्थ शक्ति के अभाव के मार्ग में स्थानीय रहता है मार्मन की पुस्तक आत्मिक अवशेष की कुंजी है जीवन का सफर चुनौतियां भरा है, वह अपनी से विचलित मार्ग से अलग और खोज सकते हैं। हमारे अंत विकास का पीड़ा एक अवश्य और अनिवार्य भाग है। जब आप आपदा आती है, कोई ऐसी चीज जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते, असफल ना करने दें, जिसे आप जानते हो, धैर्य रखें, सच को पकड़ें, समझ आ जाएगी। परीक्षण उस बड़ी अंधेरे की धुंध जैसी है जो हमारे आंखों को अंधा और मानव को सख्त करती है। जब तक हमारे परमेश्वर के वचन को निरंतर जकड़ के नहीं पकड़ते और नहीं जीते, हम आत्मिक अंधे हो जाएंगे, बजाय इसके कि आत्मिक दिमाग हो। मार्मक की पुस्तक को ढूंढे और जीवन भविष्यवक्ताओं के वचनों को हर दिन, यह कुंजी है आत्मिक विषय अवशेष और खोज से बचने की। इसमें बिना हम आत्मिक तौर से खो जाएंगे। केवल परमेश्वर के पास अनंत जीवन के वचन हैं और सब केवल वचन हैं। बड़ी और विशाल इमारत प्रतीक है, व्यर्थ कल्पना और अभिमान न संसार के दूसरे शब्दों में विचलित और बहकाना यह भरा है। अच्छी तरह से तैयार हुए लोगों से जिनके पास लगता है सब कुछ है, परंतु वे उद्धारकर्ता और उसका अनुसरण करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। वे हमेशा सिखाते रहते हैं और कभी भी ज्ञान के सच तक नहीं पहुंचते। हो सकता है वह राजनीतिक रूप से सही हो, परंतु वह आत्मा हो गए हों। वृक्ष के पास रहें। लही आलमा ने सिखाया, देखो अपने उसने उनके हृदय को बदल दिया। हाँ, उसने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया और परमेश्वर के प्रति जागृत किया, जैसे कि हमारे परमेश्वर के प्रति अपने मनों को करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा भाव बदल देता है और उस विशाल इमारत को नहीं ढूंढते। यदि हम वह सब करना छोड़ दें जो पूर्ण रूप से परिवर्तन लाता है, हम आत्मा का पतन करते हैं। उन सारे प्रचारकों को कल और आज के एल्डर और बहने, आप ऐसे ही नहीं मिशन से वापस आ सकते। एक हंस जैसे वापस गोता बेबीलोन में लगाए और अंतहीन घंटे बिताना व्यर्थ के वीडियो खेलों के आंकों पर बिना गहरी आत्मिक नींद से घिरे हुए। यदि आप आत्मा को खो देते हैं, आप खो जाते हैं, विचलित और भय के ना। सच्चे शिष्य निरंतर परमेश्वर के हर दिन एक अर्थपूंजी निजी प्रार्थना, तत्काल धर्मशास्त्र पढ़ना, निजी आज्ञा करते और सेवा में जागे रहना। वृक्ष के पास रहें और जागे रहें। यदि भुलाचल पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक थी, कुछ घबराहट से जब मैं जहां काम करता था उस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ से मिलकर मैंने उन्हें अपने मिशन की बुलाहट के विषय में सूचित किया। अपने यह निर्णय कब लिया और अपने हम से पहले विचार क्यों नहीं किया, उन्होंने मांग की। एक क्षण की स्पष्टता में एक गहन जवाब मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा, यह मैंने 19 वर्ष का लड़का होकर किया, जब मैं परमेश्वर के साथ मंदिर में उदारकर्ता का अनुसरण करने का परिणाम पवित्र अनुबंध बनाया। मैंने अपना पूर्ण जीवन उन अनुबंधों पर बनाया और मैं उन्हें पूरी तरह से रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में उत्कर्ष का एक श्रेष्ठ शिष्ट है, उसकी आवश्यकता साहसी शिष्टता है, औसतन या के स्थायी नहीं है। औसतन श्रेष्ठ का दुश्मन है और वचनबद्धता हमें अंत तक स्थायी रहने में रोकेगी। मैं गवाही देता हूं कि मार्मन की पुस्तक की गहन शक्ति को आपके जीवन को बदल देगी और मसीह का अनुसरण करने में आपके संकल्प को मजबूत करेगी। पवित्र आत्मा आपके मन को बदल देगा और आपकी मदद देखने में करेगा। वस्तु को जैसे वे हैं, वह आपको दिखाएगा कि वो आगे क्या करना चाहिए। यह नफी ने उससे वादा किया है। मैंने कहा कि जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा उन पर कार्य करेगा, कभी कष्ट नहीं होंगे। शत्रु की प्रलोभन और जलते गर्म तीर अंधा करके उस पर विजय प्राप्त कर उन्हें विनाश के लिए ले जा सकेंगे। इसलिए मैं उन्हें धन्य देने का कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उनकी आज्ञाओं का हर समय और हर बातों का पालन करें। भाइयों और बहनों, शिष्यता की सबसे बड़ी परीक्षा अंत तक स्थायी रहना है। परमेश्वर में उठो, सच को जकड़ो, अपने मंदिर के पवित्र अनुबंधों को रखो और वृक्ष के पास रखो। मैं साक्षी देता हूँ जीवित मसीह के पुनरुत्थान की है। मैं जानता हूँ वह जीवित है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं अंत तक सच्चा और विश्वसनीय रहूं और उनके भव्य उदाहरण का अनुसरण करूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre Celestial.
Porque aquí... क्योंकि देखो, ये मेरा कार्य और मेरी महिमा मनुष्य की अमरत्व और अनंत जीवन को दूं। इस कथन के अनुसार पिता की इच्छा प्रत्येक को आनंद की परिपूर्णता को पाने का अवसर देना है। अंतिम दिनों के प्रकटीकरण बताते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता ने उसके सभी बच्चों के लिए सुख की महान योजना बनाई थी, एक बहुत विशेष योजना, ताकि हम उसके साथ रहने के लिए वापस लौट सके। सुखी इस योजना को समझने से हमें अनंत दृष्टिकोण उपलब्ध होता है और आज्ञाओं, विधियों, अनुबंधों और परीक्षाओं और पीड़ाओं का सच में महत्व समझने में मदद मिलती है। एल्मा ने एक मुख्य सिद्धांत मिलता है, इसीलिए मुक्ति की योजना की जानकारी उन्हें देने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। सीखने की प्रक्रिया में क्रम को नोट करना दिलचस्प है। हमारे स्वर्गीय पिता ने पहले आदम और हवा को मुक्ति की योजना सिखाई और फिर उसने हमें आज्ञाएं दी। यह एक महान सच्चाई है। योजना को समझने से लोगों को आज्ञाओं का पालन करने में मदद मिलेगी, बेहतर निर्णय लेने और सही प्रेरणा पाने में। गिरजे में अपनी सेवा के करने दौरान मैंने विभिन्न देशों में गिरजे के सदस्यों की निष्ठा और विश्वसनीयता को देखा है, जिनमें कुछ के आपस में राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मतभेद हैं। इन विश्वसनीय सदस्यों में मैंने जो एक आम बात अक्सर पाई है वह है अनंतता के प्रति उनका दृष्टिकोण। सुसमाचार के प्रति अनंत दृष्टिकोण हमें परमेश्वर की योजना में अपने स्थान को समझने, उनके द्वारा कठिनाइयों और विकास को स्वीकार करने, निर्णय लेने और अपनी दिव्य संभावनाओं को अपने जीवन का केंद्रीय सिद्धांत बनाने की ओर ले जाता है। दृष्टिकोण वह तरीका है जब हम चीजों को एक निश्चित दूरी से देखते हैं और इसके कारण हम उनके सही महत्व को समझ पाते हैं। यह जंगल में होने और हमारे मुंह के सामने वृक्ष होने के समान है। जब तक हम पीछे ना हटे, हम समझ नहीं सकते कि वास्तव में जंगल क्या होता है। मैं एक बार लेटिशिया में कोलंबिया, ब्राजील और पेरू की सीमाओं के निकट अमेज़न जंगल गया था। मैं तब तक इसकी विशालता को समझ नहीं पाया जब तक मैंने इसके ऊपर से उड़ान नहीं ली और इसके स्वरूप को नहीं समझा। जब हमारे बच्चे छोटे थे, वे बच्चों के टीवी चैनल देखा करते थे, जिनमें एक कार्यक्रम आता था, What do you see? स्क्रीन पर कुछ चीज बहुत नजदीक से दिखाई जाती थी और बच्चों को बताना होता था कि वह क्या था, जबकि धीरे धीरे वह चीज स्पष्ट होती जाती थी। एक बार जब चीज स्पष्ट हो जाती थी, आप सरलता से बता सकते थे कि वह एक बिल्ली थी, एक पौधा था, एक फल था इत्यादि। मुझे एक बार वे इस कार्यक्रम को देख रहे थे और मैं एक बहुत चीज़ एक चीज बहुत निकट से दिखाई दी जो कि देखने में उसे बहुत गंदी लगी, बहुत ही घिनौनी। लेकिन जैसे ही चीज स्पष्ट हुई, उन्हें महसूस हुआ कि वह बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा था। तब उन्होंने मुझसे कहा, डैडी, हमारे लिए वैसा ही पिज्जा खरीद लो। उनके ये समझने के बाद क्या था जो पहले उन्हें आलोचकर दिख रहा था, अनंतता बहुत ही आकर्षित लगा था। मैं एक अन्य अनुभव को बांटता हूँ। हमारे घर में बच्चे जिग्सो पजल पसंद करते हैं। संभवतः हम सबों को इस पहेली करने का मौका मिला होगा। कुछ पजल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है। मुझे याद है हमारा एक बच्चा, उसकी पहचान गुप्त रखने के लिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, अलग अलग करके टुकड़ों पर ध्यान देता था और जब तक एक टुकड़ा उस स्थान पर फिट नहीं होता था जहाँ वह सोचता था उसे गुस्सा आ जाता था और सोचता था कि वह टुकड़ा किसी काम का नहीं है और उसे फेंक देना चाहता था। उसने अनंतता पजल को पूरा करना सीख लिया था। जब उसने समझा कि पूर्ण चित्र में प्रत्येक टुकड़े का अपना अपना स्थान था, बेशक उस समय उसे पता नहीं होता था कि इसने कहाँ लगाना है। यह प्रभु की योजना को ध्यान से देखने का एक तरीका है। हम इसके प्रत्येक हिस्से में बारे में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसके सिद्धांतों मिलाकर पूर्णता से समझने की कोशिश करनी चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि अंतिम परिणाम क्या होगा। प्रभु जानता है कि प्रत्येक टुकड़ा कहाँ लगेगा ताकि यह योजना में फिट हो जाए। सुख की महान योजना के संदर्भ में सभी आज्ञाएं अनंत महत्व की हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे निर्णयों को नश्वरता के दृष्टिकोण में ना बनाएं जिनके अनंत परिणाम होते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णयों के लिए जो अनंतता पर प्रभाव डालते हैं सुसमाचार का दृष्टिकोण होना जरूरी है। एल्डर नीले मैक्सवेल ने सिखाया था, यद्यपि हम उस पर केंद्रित हो सकते हैं जिनकी हम अंतकाल में आशा करते हैं, कुछ बातें जिनकी हमें इस जीवन में आशा करते हैं भिन्न हैं। हम आशा कर सकते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े, विवाह के लिए विशेष साथी मिले, चुनाव में जीत हो या बड़ा घर मिले। ये बातें पूरी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। पिता की योजना में हमें सहनशील शक्ति देता है, बेशक ये थोड़े समय की आशाएं पूरी ना होती हों। आशा हमें अच्छे कामों के लिए उत्साह पूर्वक व्यस्त रखती है, बेशक इसमें कोई लाभ ना दिखाई देता हो। अनंत दृष्टिकोण ना होने से या इसे खोने से हम सांसारिक दृष्टिकोण को, अपना व्यक्तिगत स्तर को मान लेते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाते। मॉर्मन की पुस्तक उन रवैयों को बताती है जो नफी ने अपनाया था और जो लमान और लैमुअल ने अपनाया था। उन सब ने बहुत अधिक कठिनाइयां और परेशानियों को सहा था, हालांकि इनके प्रति उनके रवैये बहुत ही भिन्न थे। नफी ने कहा था, प्रभु की आशीषें हमारे ऊपर इतनी महान थीं कि निर्जन प्रदेश में रहने के दौरान हम कच्चे मांस पर गुजारा करते थे। हमारी स्त्री ने अपने बच्चों को बहुतायास से दूध पिलाया था और वे सशक्त थीं, हाँ पुरुषों के समान, और उन्होंने अपनी यात्रा बिना बड़बड़ाई शुरू की। दूसरी तरफ लामान और लेमन ने नकारात्मक शिकायत की थी, अपने पिता के विरुद्ध बड़बड़ाए, और वे इसकी शिकायत कर रहे थे क्योंकि जिस परमेश्वर ने उनको मनाया था उनके कार्य वे नहीं जानते थे। परमेश्वर के कार्य को नहीं जानना या नजरअंदाज करना अनंत दृष्टिकोण खोने का एक तरीका है, और बड़बड़ाना मात्र एक लक्षण है। यद्यपि लैमन और लेमुएल ने नफी के साथ कई चमत्कार देखे थे, फिर भी वे बड़बड़ाते रहते थे। और हम कई वर्षों से इस निर्जन प्रदेश में भटक रहे हैं। हमारी स्त्री ने बच्चों के बोझ को उठाने में कड़ी मेहनत की है और इस निर्जन प्रदेश में बच्चों को जन्म दिया है और मृत्यु के सिवाय बाकी उन सब सभी कष्टों को सहा है। और ये बेहतर होता कि जेरूसलम से बाहर निकलने से पहले मर जाती ताकि उन्हें कष्ट ना सहने पड़ते। ये दोनों बहुत ही भिन्न रवैये थे, जबकि कठिनाइयां और परेशानियां जिनका सामना वे कर रहे थे एक समान थीं। स्पष्ट है उनके दृष्टिकोण भिन्न थे। अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने लिखा था, यदि हम नश्वरता को संपूर्णता के तौर पर देखते हैं तो दर्द, दुख, असफलता और अल्प जीवन संकट लगता है, लेकिन यदि हम उस जीवन के विषय के बारे में सोचें जो कि इससे बहुत पहले नश्वरतापूर्ण अस्तित्व में था और मृत्यु के बाद अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा, तो सारी घटनाएं उचित दृष्टिकोण से नजर आती हैं। एल्डर डेविड बी हेट ने प्रत्येक बात को उचित दृष्टिकोण से देखने के महत्व को समझाने के लिए मूर्तिकार माइकल एंजेलो के विषय में एक कहानी सुनाई थी। जब मूर्तिकार पत्थर को औजार से काट रहा था, एक लड़का रोज आता और चुपचाप देखता था। जब दाऊद की आकृति नजर आने लगी और उस पत्थर में दिखाई दी जिसकी पूरे विश्व ने प्रशंसा की, लड़के ने माइकल एंजेलो से पूछा, तुम कैसे जानते थे कि दाऊद पत्थर के अंदर था? दृष्टिकोण जिससे मूर्तिकार ने उस पत्थर को देखा था उस लड़के से भिन्न था जो उसे काम करते देखता था। कलाकार के होनहार दृष्टिकोण ने उस पत्थर में से उत्तम कलाकृति की रचना करना संभव किया था। प्रभु जानता है कि वह हम में से प्रत्येक से क्या प्राप्त करना चाहता है। वह जानता है कि किस तरह का सुधार वह हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहता है और उसे सलाह देने का अधिकार हमें नहीं है। उसके विचारों और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पास प्यार करने वाला न्यायी दयालु स्वर्गीय पिता है जिसने हमारी अनंत खुशी के लिए एक योजना तैयार की है। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह उसका पुत्र और विश्व का उद्धार करता है। मैं जानता हूँ अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। मैं ये बातें यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, आमीन।
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, Professor Monson, I switched. I went into my German native language. I wanted to say, actually, on a signal from the conductor, the choir and congregation will join.
कोरिस्टर के निर्देशन पर अब गायक मंडली और सभा खड़े होकर कम ओ द किंग्स ऑफ किंग्स गाएगी। मध्यवर्ती गीत गाए जाने के बाद हम 12 प्रेरितों के परिषद एल्डर नील एल एंडरसन को सुनेंगे। उनके बाद एल्डर जॉर्ज एफ जबालुस 70 के अपना संदेश स्पेनिश में देंगे।
This is the 185th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजे का 128वीं अर्थवार्षिक महासम्मेलन है।
As we were singing, I was deeply moved.
जब हम देख रहे थे, मैं बहुत गहन रूप से प्रभावित हुआ था कि इस क्षण हजारों शायद लाखों विश्वासी सदस्य 200 देशों में लगभग 75 भाषाओं में मिलकर अपनी आवाज उठाकर गा रहे थे.
Raising our voices to God, singing, Come, O thou King of Kings, we've waited long for thee. With healing in thy wings to set thy people free. Come, O thou King of Kings.
Come, thou King of Kings. हम बहुत एक विशाल व्यापक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं.
Disciples of the Lord Jesus Christ.
चाहे आप यहाँ कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठे या गिरजे में घर में,
we are far from perfect, but we are not casual in our faith. We believe in Him, we worship Him, we follow Him, we deeply love Him.
हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसके अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसका कार्य संपूर्ण विश्व में महत्व है. भाइयों बहनों, हम प्रभु के दैवत्वीय आगमन से पूर्ण के समय में रह रहे हैं, एक ऐसा समय जिसकी विश्वासियों को युग में प्रतीक्षा थी. हम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के समय में रहते हैं, प्रकृति आपात के समय में, ऐसे समय में जब विश्वास में अव्यवस्था और उत्तेजन के कारण खींचातान हो रही है. लेकिन हम पुनरुत्थान के समय में भी रह रहे हैं, जब सुसमाचार का संपूर्ण विश्व में ले जाया जा रहा है, एक ऐसा समय जब प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि वह पवित्र लोगों को खड़ा करेगा और उन्हें धार्मिकता और परमेश्वर की शक्ति से लैस करेगा. हम इन समयों में और प्रार्थनाओं में आनंद होते हैं. हम साहस के समय अपने संघर्षों और अनिश्चितताओं का सामना करने की आशा करते हैं. कुछ कठिनाइयां दूसरों से अधिक कष्टदायक होती हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं बच सकता. एल्डर नी ए मैक्सवेल ने एक बार मुझसे कहा था, यदि आपके लिए सब कुछ ठीक हो रहा है तो बस प्रतीक्षा करो. यही हमारी नाश्वरता है. यद्यपि प्रभु ने हमें बार बार आश्वासन दिया कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं, एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए जो इस संसार से आगे की ओर देखता है, हम हमेशा आसान नहीं होता जब हम कठिनाइयों के बीच में रहते हो. अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने मुझे अनंत दृष्टिकोण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था. 18 साल पहले स्विट्जरलैंड में अध्यक्ष मॉन्सन के साथ ट्रेन में सफर करते हुए मैंने उनसे उनकी भारी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा था. उनके जवाब ने मेरे विश्वास को मजबूती दी थी. प्रथम अध्यक्षता में अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा, हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रभु का कार्य है और वह इसका निर्देशन करता है. उसके हाथों में पतवार है. हमें आश्चर्य होता है जब हम उसे ऐसे असुरों की रचना करते देखते हैं जो हम नहीं रच सकते, और उसे ऐसा चमत्कार करते देखते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापित करने में प्रभु के चमत्कारों को देखने और विश्वास करने से हमें अपने स्वयं के जीवनों में भी प्रभु के हाथों का काम करते देखने और विश्वास करने में मदद मिल सकती है. प्रभु ने कहा था, मैं अपने स्वयं का कार्य करने में समर्थ हूँ. हम में से प्रत्येक अपने हिस्से का कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन सब कामों की काम करने वाला वही है. अपने पिता के निर्देशन में उसने इस संसार की रचना की थी. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें भी कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई. मैं एक उदाहरण देता हूँ.
Let me share an example. In 1831, with only 600 members,
1831 में गिरजे के केवल 600 सदस्यों के साथ प्रभु ने कहा था, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां पृथ्वी पर मनुष्य को सौंप दी गई हैं, और अब से सुसमाचार पृथ्वी के अंतिम छोरों तक जाएगा, एक ऐसे पत्थर के समान जो किसी के हाथ बिन खेदे पहाड़ों से उखड़ आगे बढ़ेगा जब हम सारी पृथ्वी को न ढक लें. भविष्यवक्ता नेफाई ने अपनी भविष्य देख लिया था कि गिरजे के सदस्य पृथ्वी की जनसंख्या की तुलना में कम होंगे, लेकिन वे संपूर्ण पृथ्वी पर होंगे. अपने राज्य की स्थापना करने के प्रभु के हाथ के तीन सुंदर उदाहरण के तीन मंदिर हैं, जिसकी घोषणा आज अध्यक्ष मॉन्सन ने की है। केवल कुछ दशक पहले कौन कल्पना कर सकता था कि हाइती, थाईलैंड और आइवरी कोस्ट में मंदिर होंगे। मंदिर के स्थान का निर्णय लेना सरल नहीं है। ये प्रभु के भविष्यवक्ता को प्राकृतिकरण द्वारा दिया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और संतों की धार्मिकता का कार्य को देख दर्शाता है, जो उसके घर को पीढ़ियों तक संजोकर रखेंगे और देखभाल करेंगे। मेरी पत्नी कैथी और मैं 2 साल पहले हेती गए थे। ऊंचे पहाड़ पर पॉट डाओ प्रिंस को देखते हुए हमारे साथ हेती के संत तब एल्डर थॉमस मॉन्सन द्वारा देश के केवल 30 पहले हुए संपन्न दिवस को मनाने शामिल हुए थे। हम में से कोई भी 2010 में आए विनाशकारी भूकंप को कभी नहीं भूल पाएगा। विश्वसनीय सदस्यों और साहसी प्रचारकों के समूह के साथ, जिसमें लगभग सभी हेती के निवासी हैं, गिरजे ने इस द्वीप के निरंतर विकास किया और मजबूत हुआ है। परमेश्वर के संतों को सफेद वस्त्रों में प्रभु के पवित्र में पवित्र पोहती की शक्ति का निर्देश करते हुए और पवित्र रीतियों को करते देख मेरे विश्वास को मजबूत करता है। कौन कल्पना कर सकता था कि थाईलैंड के सुंदर शहर बैंकॉक में प्रभु का घर बनेगा। मुख्य रूप से बुद्ध देश थाईलैंड में ईसाई केवल 1% है। हेती के समान बैंकॉक में भी पृथ्वी ने चुने हुओं को एकत्रित किया है। कुछ महीने पहले वहां के दौरे में हम सतियत एन गुसावाद से मिले थे। सतियती 17 वर्ष की आयु में गिरजे में शामिल हुआ था। उसने अपनी मातृभूमि में मिशन की सेवा की थी। बाद में वे ग्रीव में इंस्टीट्यूट क्लास में मिला था और मनीला मंदिर में मोहरबंद हुए थे। 1993 में कायवतुवंतन परिवार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसका ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया था। सत्यती को छाती से नीचे लकवा मार गया था। उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। सत्यत बैंकॉक में इंटरनेशनल स्कूल का पसंदीदा अध्यापक है। वह थाईलैंड के उत्तरी स्टेक का अध्यक्ष है। परमेश्वर चमत्कार उसके कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है। आइवरी कोस्ट में गिट्टी के चमत्कार को बिना 2 कंपनियां फिलिपी एंड एनियस एसोटा और लाउसियस और एगेथा एफओस के नाम लिए नहीं बताए जा सके। वे गिट्टी में युवा विवाहिती दंपतियों के रूप में यूरोप में शामिल हुए थे, एक जर्मनी में, एक दूसरा फ्रांस में। 1980 के दशक में एक दूसरे को जाना जानते हुए फिलिपी और लुसियन ने महसूस किया कि उन्हें अपनी जन्मभूमि अफ्रीका देश परमेश्वर का राज्य बनाने की उद्देश्य से वापस जाना चाहिए। बहन औसत जो कि जर्मन है अपने परिवार को छोड़कर और भाई औसत को स्थापित मैकेनिकल इंजन के कार्य को छोड़ने के लिए अध्यात्मिक विश्वास चाहिए था। दोनों दंपति एक दूसरे से पहली बार आइवरी कोस्ट में मिले और संडे स्कूल में शुरू किया। ये 30 साल पहले हुआ था। अब वहाँ एक सुंदर अफ्रीकी देश के 8 स्टेक और 27,000 सदस्य हैं। अफ्रीला दंपति उदारता में निरंतर सेवा करती है, जैसे असौर दंपति रही है, जिन्होंने हाल ही में अक्रॉस गायना मंदिर में मिशन समाप्त किया है। क्या आप परमेश्वर के कार्य में उनके हाथ को देख सकते हैं? क्या आप हेती के प्रचारों के जीवनों में या थाईलैंड के कायवेलो तनेस के जीवनों में परमेश्वर के कार्य में उसके हाथ को देख सकते हैं? क्या आप अफाउल दंपति एनासार दंपति के जीवनों में परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं? क्या आप अपने स्वयं के जीवन परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं? और कोई मनुष्य किसी भी कार्य में परमेश्वर का इतना अपमान नहीं करता सिवाय उनके जो सभी कार्य में उसके हाथ को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर के चमत्कार केवल हैती, थाईलैंड या आइवरी कोस्ट में ही नहीं हो रहे। अपने आसपास देखें, उसका हाथ वहां भी है। परमेश्वर हर एक लिए के लिए सचेत है। हाँ, वह अपने लोगों को गिनना और उनकी दया का कटोरा पूरी पृथ्वी पर है। कभी कभी हम दूसरों के जीवन में प्रभु के हाथ को देख सकते हैं, लेकिन आश्चर्य करते हैं मैं कैसे उसके हाथ को अपने स्वयं के जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उतारकर्ता ने कहा, संदेह ना करो, मत डर, केवल विश्वास कर। तुम्हारे पिता के जाने बिना एक गौरैया भी जीवन भूमि पर नहीं गिर सकती, इसलिए डरे नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। उस युवक को याद करें जिसने संकट में भविष्यवक्ता एलिशा को पुकारा था जब वे शत्रुओं से घिर गए थे। हाथ, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अलीशा ने जवाब दिया, फिर डरो मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। और अलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु उसकी आंखें खोल दी कि वह ये देख सके। तब प्रभु ने युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि पहाड़ पर चारों ओर घोड़े और अग्नि रथ खड़े थे। जब आप अपने जीवन में प्रभु के हाथ देखने के लिए विश्वास से प्रार्थना करते हो, वह आपकी आत्मिक आंखों अच्छी तरह खोल देगा और आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि आप अकेले नहीं है। धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि हम भविष्य की उन बातों पर विश्वास से दृढ़ रहें। भविष्य की बातें क्या हैं? उद्धारकर्ता ने प्रार्थना की थी, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े और उसने घोषणा की ताकि स्वर्ग का राज्य आए। हमने अभी गीत गाया था, हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम उद्धारकर्ता की वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। उसके आगमन के विचार उत्तेजित हो जाती है, यह बहुत भव्य होगा। इसकी व्यापकता और भाव्यता, विशालता और वैभव उन सब से अधिक होगी जिसे कभी नाश्वर आंखें ना देख या अनुभव किया होगा। उस दिन वे कपड़ों में लिपटा चरनी में नहीं आएगा, लेकिन वह स्वर्ग के कपड़ों में शक्ति और महान महिमा में लिपटा अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होगा। हम प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। सूर्य और चांद बल जाएंगे और तारे अपने स्थानों से हट जाएंगे और आप और मैं या वे जो हमारा अनुसरण करते हैं पृथ्वी के हर कोने से संत उत्साहित हो उठेंगे और उससे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। जो धार्मिकता में मर गए और वे भी उससे मिलने के लिए स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। फिर एक अनुभव जिसकी कल्पना करना असंभव लगता है, सभी जीवित कहलाता है, मुझे एक साथ दिखेंगे। ये कैसा होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि यह होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्यवाणी की गई है। हम श्रद्धा में झुकेंगे और प्रभु अपनी वाणी में बोलेगा और पृथ्वी के दूर दूर देश इसे सुनेंगे और ये ऐसी होगी जैसे जल की बहुत धाराएं और बड़े गर्जन का शब्द। फिर प्रभु उद्धारकर्ता अपने लोगों के मध्य खड़ा होगा। स्वर्ग के दूतों और संतों को पृथ्वी का अविस्मरणीय मिलना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा यशया बताता है, पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का उद्धार देखेंगे और वे सब लोगों पर शासन करेगा। उस दिन संदेश करने वाले शांत होंगे क्योंकि सभी उसे सुनेंगे और हर एक घुटना झुकेगा और एक जीव स्वीकार करेगी कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता संसार का मुक्तिदाता है। आज ईस्टर है, हम संपूर्ण संसार के साथ उसके भव्य पुनरुत्थान में और हमारा स्वयं का वादा किया गया पुनरुत्थान में आनंदित हैं। इन भव्य घटनाओं को बार बार अपने स्वयं के मन में और अपने परिवार और मित्रों के साथ अध्ययन करते हुए उसके वापस आने की तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ उसकी प्रार्थना हमारी प्रार्थना हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मैं गवाही देता हूँ कि वह जीवित है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन।
Yo tenía solo 12 años de edad cuando
los misioneros. मैं सिर्फ 12 साल का था जब प्रचारक शहर में पहली बार आए थे, वहाँ जहाँ नॉर्दर्न चिले में जन्मा था। एक रविवार 6 महीने से एक छोटी शाखा में जाने के पश्चात एक प्रचारक ने मुझे रोटी प्रस्तुत की जैसे वे प्रभु भोज को दे रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और विनम्रता से कहा, मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं? उसने जवाब दिया। मैंने उसे बताया, क्योंकि मैं गिरजे का सदस्य नहीं हूँ। प्रचारक उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने कल्पना की, मैं सोच रहा था, लेकिन ये युवक हर सभा में होता है, कैसे ये गिरजे का सदस्य नहीं हो सकता। उस दिन के बाद प्रचारक तुरंत ही मेरे घर पर आए और उन्होंने वे सब कुछ किया मेरे पूरे परिवार को सिखाने के लिए जो कर सकते थे, लेकिन मेरे परिवार को कोई रुचि न थी। ये सिर्फ मेरी साप्ताहिक 6 महीनों से ज्यादा की गिरजा में उपस्थिति थी, जिससे प्रचारकों को जारी रखने का काफी भरोसा हो गया था। आखिरकार वो महान क्षण आया जिसका इंतजार था, जब उन्होंने मुझे यीशु मसीह के गिरजे का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रचारकों ने मुझे समझाया, क्योंकि मैं नाबालिग था, मुझे मेरे माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता है। मैं अपने पिता से मिलने गया सोचते हुए कि उनका प्यारा सा जवाब होगा, बेटा जब तुम बालिग हो जाओगे तुम स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जबकि प्रचारकों ने उनसे बात की थी, मैंने लगातार प्रार्थना उनके हृदय को छूने की थी ताकि वे मुझे चाहिए की अनुमति दे दे। प्रचारकों को उनका उत्तर निम्नलिखित था, एल्डर 6 महीनों से अधिक मैंने अपने बेटे को जॉर्ज को हर रविवार सुबह जल्दी उठते उसके अच्छे कपड़ों में पहनते और गिरजाघर जाते देखा। मैंने सिर्फ उसके जीवन में गिरजा का अच्छा प्रभाव ही देखा है। तब उन्होंने मुझे आश्चर्यजनक करते हुए सबोकित कर दिया, बेटा यदि तुम इस निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेते हो तब वो तुम्हें बपतिस्मा लेने की मेरी अनुमति है। मैं अपने पिता के गले लिपट गया, उसका चुम्बन लिया। यीशु मसीह के गिरजाघर के सदस्य होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? अध्यक्ष जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने इसे ऐसे व्यक्त किया था, हमारे पास ये दो महान जिम्मेदारियां हैं, पहली अपने स्वयं के उद्धार की खोज करना और दूसरी हमारा कर्तव्य अपने सहभागियों के लिए। ये तभी मुख्य जिम्मेदारियां हैं जिसे हमारे पिता ने हमारे लिए नियुक्त किया है, अपने स्वयं के उद्धार की खोज करना और दूसरों के लिए भी, इस समझ के साथ कि उद्धार का मतलब सर्वश्रेष्ठ स्तर की महिमा जिसे पिता ने अपने आज्ञाकारी बच्चों के लिए प्रदान की है। ये जिम्मेदारियां जो कि हमें सौंपी गई हैं और जिन्हें हमने स्वतंत्रता से ग्रहण किया है, हमारी प्राथमिकता को, हमारे कामनाओं, हमारे निर्णय और हमारे प्रतिदिनों के मिलने को परिभाषित है। किसी के लिए जो उसके समझता है यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण उत्कृष्टता सच में उनके पहुंच में होता है, उसकी निंदा संगठित करने के प्रयत्न को असफल करता है, इसलिए उदारता का विरोध करने की निंदा करते हैं, वैसे जैसे सफलता का विपक्ष असफल है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन ने हमको सिखाया कि आदमी कभी लंबे समय तक आराम नहीं कर सकता, एक बार वह देख ले कि संपूर्णता उनके पहुंच में है। यदि तब हम थोड़े से उत्कर्ष के साथ संतुष्ट हो सकते हैं, यदि हम जानते हैं कि उत्कर्षता संभव है। मुझे नियम की 4 कुंजियों को बांटने की अनुमति है, जो कि हमारी मदद अपनी इच्छा से हमारे स्वर्ग में पिता की जिम्मेदारी को पूरा करने की है तथा उसकी अपेक्षा का जवाब है कि हम वैसे बनेंगे जैसा वह है। अपना कर्तव्य को सीखते रहो। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को करते हैं, यदि हम उसके प्रति जिम्मेदार हैं, हमें सीखने की समझदारी की अपेक्षा द्वारा शुरुआत करनी चाहिए और उसकी हमारे लिए अच्छा अनुसार जीना होगा। प्रभु ने कहा था, इसलिए अब हर मनुष्य को अपने कर्तव्य सीखने हैं और क्षेत्र में सारे लगन से काम करना है जहां उसकी नियुक्ति की गई है। सही करने की इच्छा ही काफी नहीं है यदि हम वास्तविकता में नहीं समझते कि पिता हमसे क्या अपेक्षा करता है और हमें क्या करना चाहता है, नहीं जानते कि किस रास्ते जाना है। ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانی میں تو اس نے چیشر بلی سے پوچھا کیا آپ مجھے بتائیں گے کرپا سے یہاں میں کس اور جاؤں؟ بلی نے جواب دیا یہ ایک اچھا سودے پر نربھر کرتا ہے کہاں تم جانا چاہتی ہو؟ ایلس بولتی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کدھر. تب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہاں جانا ہے بلی نے بولا تتھاپی ہم جانتے ہیں کہ راستہ جو ورکش دیکھا جس کے لبھاونے پھل ہر ایک کو آنندت کرتے ہیں سنکیت ہے وہ فاٹک اور کٹھن وہ مارگ جو جیون کو پہنچاتا ہے اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں. نیفی نے ہم کو شکشا دی مسیح کی وانی تمہیں بتلائے گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تب اس نے بتایا کہ پوتر آتما بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اس لیے یہی مول کارن ہے جو اسے انومتی دیتا ہے ہمارے کرتویہ کو سکھانے کی مسیح کی وانی ہے کہ ہم پراچین اور آدھنک بھوشیہ وکتاؤں سے پراپت کریں اور ویکتیگت پرکتیکرن جو کہ پوتر آتما دوارا پراپت ہوتا ہے. دوسرا نرنائے لیتے رہنا یہاں تک کہ ہم نے پنستھاپت سوسماچار کے وشے میں سیکھا ہے ایک وشیش آگے ایک بلاحج میں کرتویہ کے ساتھ سیوا کرنا یا ہمارے مندر میں بنائے انوبندھ چناؤ ہمارا ہے تاکہ ہم اس نئے گیان کے انوسار کام کرتے ہیں یا نہیں. ہر ویکتی پوتر انوبندھ میں پرویش کرنے کو سوتنتر ہے اپنے لیے بپتسما لینے یا مندر دھرم ودھیوں کو کرنے کیونکہ شپت لینا پرانے سمے سے لوگوں کے دھرم کے لیے سامانیہ ہے. پرانا قانون بتاتا ہے کہ تم میرے نام کی جھوٹی شپت نہ کھانا اس لیے سروچ سمے میں ادھارکرتا نے ہمارے وچن ردتا کا پالن ایک اونچائی طریقہ سکھایا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ہاں کا ارتھ ہو ہاں اور نہ کا ارتھ نہ. ایک ویکتی کے لیے اس کی کسی پرتی یا اس سے ادھک سچائی اور وچن ودھتا کا پریاپت شبدوں کو استھاپت کرنے کی اچھا ہوتی ہے چاہے وہ کوئی ہمارے سورگیہ پتا ہی کیوں نہ ہو. وچن ودھتا کا آدھار کرنا سچائی اور ہماری ایمانداری کے شبدوں کا سپشٹیکرن بنا دیتا ہے. تیسرا انوسار کام کرنا اپنا کرتویہ سیکھتے رہنا اور نرنے لیتے رہنا کے بعد وہ اسے سیکھنے اور سمجھنے سے جڑا ہے ہمیں اس کے انوسار کام کرنا چاہیے. درن سمرن کا ایک شکتیشالی ادھارن میل کھاتا ہے اس کا وچن ودھتا اپنے پتا کے ساتھ ادھارکرتا کے انوبھو سے آتا ہے. ایک بیمار ویکتی جسے لکھوا تھا کو چنگائی کے لیے اس کے پاس لایا گیا تھا. یشو نے اس کا وشواس دیکھ کر اس لکھوے کے روگی سے کہا پتر تیرے پاپ شما ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ یشو مسیح کا پرائشت ہمارے پاپوں کے شما پراپت کرنے کے لیے آوشک ہے لیکن لکھوے کے روگی کی چنگائی کی شرنکھلا کے دوران یہ بڑی گھٹنا ہوئی نہیں ہوتی گتسمنی بھی نہیں ہوتا اس لیے یشو نے صرف لکھوے کے روگی کو سمرتھ کے ساتھ آشیش دی کھڑے ہونے کی پرنتو اس نے اپنے پاپوں کو بھی شما کیا. سپشٹ چن اس کے دوارا دیا گیا تھا کہ وہ سفل نہیں ہوا کہ وہ وچن وردتا کا جو اس نے اپنے پتا کے ساتھ بنائی تھی پورا ہوا اور وہ گت سمنی اور کروس پر وہ کر رہا تھا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. جو رستہ ہم نے چنا تھا وہ سکرا ہے چنوتیوں کے راستے کے ساتھ جس میں یشو مسیح میں وشواس کی آوشکتا ہوتی ہے اور ہم پورے شرم سے اس پر چلتے اور آگے بڑھتے ہیں. ہمیں پشچاتاپ کرنے اور پالن کرنے اور دھیرے کی ضرورت ہے بلکہ یدی ہم پوری طرح سے ساری پرستھتیوں کو نہ سمجھے جو ہمارے چاروں اور ہوتی ہیں ہمیں دوسروں کو شمع کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے سیکھا ہے چناف کرنا چاہیے. چوتھا اچھا پوروک پتا کی مرضی کو گرہن کرنا ششیتا کو نہ صرف اپنے کرتویہ سے سیکھنے کی صحیح نرنے لینے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے پرنتو ہماری اچھا انوسار انتی اور پرمیشور کی اچھا کو گرہن کرنے کی یوگیتا بھی وشیش ہے چاہے یہ ہمارے نیک کامناؤں سے یا پسند میل کھاتے ہوں یا نہیں. میں اس کوڑی کے ویوہار سے جو پربھو کے پاس آیا تھا سے پربھاوت ہوا اس سے ونتی کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا یدی تو چاہے تو مجھے شدھ کر سکتا ہے. کوڑی نے کوئی مانگ نہیں کی یہاں تک کہ اس کی اچھا نیک رہی ہوگی اسے سادھنتا سے پربھو کی مرضی کو گرہن کرنا پڑا. کچھ سالوں پہلے ایک پریہ وشواسی دمپتی جو میرے متر ہیں کو سالوں بعد ایک پتر سے آشیشت ہوئے تھے جس کے لیے وہ سالوں سے پرارتھنا کرنے رہے تھے. وہ گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا جبکہ हमारे मित्र और उसकी बेटी जो सिर्फ एक ही अन्य बच्चा था ने नए आए हुए बालक के साथ आनंद लिया। एक दिन यद्यपि कुछ अनहोनी हो गई, छोटा बालक जो सिर्फ 3 साल का था अचानक से कोमा में चला गया। जितनी शीघ्रता से मैंने परिस्थिति को जाना था, मैं अपने मित्र को कॉल कर उसके कठिन समय पर मदद प्रदान करने का प्रस्ताव व्यक्त किया था, लेकिन उसका जवाब मेरे लिए एक शिक्षा थी। उसने कहा, यदि पिता की मर्जी है उसे अपने पास लेने की, तब हमारे लिए सब सही है। मेरे मित्र के शब्दों में जरा सी भी शिकायत, बांगीपन या विरोध नहीं था। इसके विपरीत शांत, मैंने केवल उसके शब्दों में परमेश्वर के प्रति आभार देखा कि उसने उन्हें उस छोटे से पुत्र के साथ थोड़ा समय बिताने को दिया था। यहाँ तक उन्हें पूरी तरह से उनके पिता की इच्छा नहीं मानती। कुछ दिनों पश्चात वह नन्हा सा अपने स्वर्गीय घर में वापस चला गया था। चलो कर्तव्य को सीखने के द्वारा आगे बढ़ते चलो, सही निर्णय लो, उन निर्णयों के अनुसार काम करो और अपने पिता की इच्छा को ग्रहण करते रहो। मैं कितना आभारी और प्रसन्न हूँ। 47 सालों पहले मेरे पिता ने मुझे वो निर्णय लेने दिया। समय बिताने से मैंने समझा कि उन्होंने वे परिस्थितियां क्यों दी थी। उसके निर्णय के प्रति जिम्मेदार होना का मतलब है मेरे स्वर्गीय पिता के प्रति जिम्मेदार होना और अपना स्वयं का और अपने साथियों का उद्धार ढूंढना, जिससे कि मेरे पिता के अपेक्षा अनुसार और बनाए जाए और मुझे भी बनाए दे। इस विशेष अवसर पर मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ उसके प्रिय पुत्र जीवित हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir will now favor us with "Tell Me the Stories of Jesus," after which we will be pleased to hear from Elder Joseph W. Sitati of the 70. He will be
Tell Me the Stories of Jesus. अब क्वायर गीत गाएगी, जिसके बाद 70 के एल्डर जोसेफ डब्ल्यू 70 के सुनने का हमारा सौभाग्य होगा। उनके बाद एल्डर रसल एम नेल्सन 12 प्रेरित के परिषद से होंगे।
Scenes by the way. Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior of the world. In the day that God the Father called upon His only begotten Son to make man in the
image of God, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समता में बनाए। वह अपने बच्चों को आशीषित करता है कहते हुए, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और अपने सब में कर लो और समुद्र और सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसलिए हमारी नश्वरता की यात्रा दोनों एक पवित्र नियुक्त और एक आशीष के साथ आरम्भ हुई थी। प्रिय पिता ने हमें नियुक्त किया और फल फूलने की आशीष दी और नियंत्रण रखो, तभी तो हम प्रगति करें यहाँ तक कि उस जैसे बन सके। भाइयों और बहनों, इस दोपहर को मैं अपने आपके विश्वास और प्रार्थना को आमंत्रित करता हूँ। जैसे मैं कुछ विचारों को आपके साथ कुल तीन मूल आंतरिक गुणों को हमारी पवित्र प्रवृत्ति के साथ बांटता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि हम पूरी तरह से पहचाने जाएं और अपने पवित्र जिम्मेदारियों को पूरी करें। हमारे पिता का नियुक्ति हमारे पवित्र प्रवृत्ति को बनाए रखने में, ताकि हम अपनी यात्रा का संचालन कर सकें, अधिक सफलता से करें और अपने पवित्र नियति को पा सकें। पहला, परमेश्वर ने हमें फलने फूलने की नियुक्ति किया। फलो फूलो का एक महत्वपूर्ण भाग उससे आगे देखने, जिससे कि परमेश्वर का राज्य को धरती पर लाया जाए। उद्धारकर्ता ने शिक्षा दी, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह फल फला रहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो चाहे मांगो और वह तुम्हें हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे लिए ठहरोगे। हम फले फूलते हैं जैसे हम मसीह में बने रहते हैं, अपने स्वयं के ऊपर अंत उसकी सेवा करते हैं, दूसरों को उस तक आने की सहायता करते हैं। हमारे समय में जीवित भविष्यवक्ता और प्रेरित लगातार अपनी आवाजें उठाते, हम में से हर एक को आमंत्रित करते और अधिकार कार्य में अपनी क्षमता और मौकों के अनुसार पूरी तरह से लगे रहो। जवाब का शुरुआती स्थिति है, भविष्य से फल लाओ, प्रतिफल विनीत रहो और हृदय में दीन रहो, तब हम अधिक मसीह के पास आएंगे। जैसे हम पवित्र आत्मा के विनम्र को बुलाते और परिणाम को सभी अनुबंधों को पालन करते और हम में से जो बने हैं, हम उद्धारकर्ता का उपहार को ढूंढते और पा सकते हैं। अपने परिवारों को, हमारे पूर्वजों और हमारे सदस्यों और गैर सदस्यों और दोस्तों को यीशु मसीह का सुसमाचार को प्राप्त करने को आमंत्रित करने का बल प्राप्त करते हैं। उद्धारकर्ता की आत्मा में काम करना एक कर्तव्य नहीं है, यदि एक आनंद है। चुनौतियां विश्वास करने के अवसर बनाती हैं। हम सदैव बातों को, चाहे जहां भी तुम हो, मृत्यु पर परमेश्वर की साक्षी के रूप में खड़े होना चाहते हैं। हम सभी को उद्धार के काम में पूरी तरह से लगे रहना चाहिए। उद्धारकर्ता ने हमें यह जिम्मेदारी वादे के साथ दी है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में से कुछ पिता को मांगो वह तुम्हें दे। दूसरा, परमेश्वर हमें फलने को नियुक्त किया। हमारी भौतिक शरीर परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, हमें एक स्वर्गीय पिता के कार्य के आदेश के रूप में प्राप्त किया है। यह मनुष्य के जीवन को अमर और अनंत लाता है। शरीर का अर्थ के द्वारा हम मनुष्य अपने पवित्र शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी आत्मिक बच्चों को पवित्र और शारीरिक जीवन का अनुबंध करना एक अधिकार है। बच्चे पैदा करना अन्य आत्मिक परमेश्वर के बच्चों को पृथ्वी के जीवन का आनंद लेने के अवसर को प्रदान करना, वे सभी को नश्वरता में जानते हैं। जन्म के पास उन्नति करने और उत्कर्ष करने का अवसर है, यदि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में शादी करना प्रथा है, जो कि परमेश्वर की फूलों की नियुक्ति को प्राप्त करने के लिए नियुक्त है। एक समान लिंग फलते फूलते नहीं है। एक कानूनी और नियमयुक्त विवाह मंदिर में मुहरबंद हुआ है, जहां मुहरबंद अनुबंध का आदर अभिभक्तियों और उनके बच्चों को परमेश्वर का उत्तम अनुभव और फलती फूलती जिंदगी के तैयार को अवसर करना देता है। यह उन्हें अच्छा कार्य उसमें परमेश्वर के साथ बनाए रखना अनुबंध की जीता जी सकते हैं, क्योंकि हमारा उसका हमारे लिए प्रेम परमेश्वर प्रदान किया है, ताकि उसके सभी वफादार बच्चे जो नहीं करते ये योग्य नहीं है। विवाह अनुबंध की आशीषों और बच्चों का आनंद लेने में असमर्थ है। ये कई कारणों से इन आशीषों को पूरा होने उनकी इच्छा से नहीं होते, परंतु प्रभु के नियुक्त समय में इन आशीषों को आनंद पाएंगे। जीवित भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने उन सभी को जिनके पास अनंत विवाह के अनुबंधों के बुद्ध और विश्वास के आगे बढ़कर परमेश्वर का अवसर है को सलाह दी है। हमें उस पवित्र समय को छोड़कर नहीं जो किन्हीं संसारों कारणों से पीछे हो या अपने अपेक्षा मुताबिक साथी के साथ स्तर को पकड़ रहे हैं, जो कि सभी अनुभव जिम्मेदारियों के अयोग्य हैं। उन सभी के लिए जो अनुबंध के अंत विवाह में मोहरबंद हुए हैं और वे जो अनुबंध का पालन करने के द्वारा फलते फूलते और विपक्ष के पास कभी भी उनके अनंत संगीत के नींव को हिलाने की ताकत ना होगी। तीसरा, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के अपने बस में नियुक्त किया है। पृथ्वी को अपने बस में करें, हर जीव जंतु के ऊपर श्रेष्ठ इन बातों पर नियंत्रण करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और उसके बच्चों के उद्देश्यों की सेवा करें। वश में करना में शामिल है अपने स्वयं के शरीर के ऊपर अधिकार रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब चीजों का असह्य शिकार बनना शामिल हो। यह परमेश्वर की अभिलाषा के प्रतिकूल उनका प्रयोग किया जा रहा है। बस में करने की पृथ्वी की क्षमता विनम्रता के साथ हमारे मानवता की कमजोरी की पहचान से शुरू होती है और मनुष्य और उसके प्रायश्चित के द्वारा हमें सामर्थ्य उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए मनुष्य ने कहा है कि यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तब मैं निमित्त जो आवश्यक होगा उसे करने में सामर्थ होगा। ये सामर्थ्य हमें उपलब्ध कराई गई है जिससे हम उसकी आज्ञाओं की आज्ञाकारिता में कार्य करना चुनते हैं। हमें अपने आत्मा को के द्वारा खोजकर और अपने हुनर में प्रगति के द्वारा बढ़ाना है। मैं अफ्रीका में कई परिवारों के प्रारंभ विनम्र परिस्थितियों में जन्मा और पला बड़ा हूँ। मुझमें अपने आप को ढूंढने और पाने के द्वारा उन परिस्थितियों से मेरे प्रिय माता पिता की मदद अच्छी शिक्षा के साथ ऊपर उठाने की योग्यता थी। उन्नति का दर्शन देखना कि क्या बनना है मेरी प्रगति के लिए आवश्यक था। पश्चात जैसे एक दंपति के रूप में मेरी पत्नी और मैंने पुनर्स्थापित सुसमाचार को पाया था, जिससे हमारी जीवन आत्मिक निर्देशक के साथ आश्चर्य होता रहा। प्रत्येक परिवार की तरह हम पास में मुसीबत और चुनौतियां हैं। हमें यदि प्रभु की ओर से और सहायता के लिए देखते हैं और उत्तर मिलते हैं जो शांति और चैन लाता है। हम इन बातों को अभिभूत होने की महसूस न करना। चुनौतियां मानव जाति जिसका आज सम्मान कर रही है, नश्वरता शामिल है, अश्लीलता, हथियार बंद लड़ाई, प्रदूषण, तत्वों का दुरुपयोग और गरीबों में परमेश्वर हूँ। मैंने संसार और मनुष्य मांस हड्डी में होने से पहले बनाया। यदि तुम मेरी ओर लौटे और मेरी वाणी सुनो और विश्वास करो और अपने सभी उल्लंघनों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो पानी में का भी मेरे प्रिय इकलौते पुत्र के नाम से, तुम्हें पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। उसके नाम में से कुछ मांगो और जो कुछ तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वासी अंतिम दिनों के संत जो अपने पवित्र असमर्थ को समझते हैं, पूरे दिल से प्रभु परमेश्वर की प्रायश्चित की शक्ति के द्वारा निर्भर होते हैं। उनके स्वभाव कमजोरी में बल प्रदान करते हैं। सब कुछ करता हूँ। वे बुराई के प्रलोभ से उभर आते हैं, जो कि बहुतों को विपक्ष के अंतर्गत कैद में करता है। पौलुस ने कहा था, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनको भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। स्वर्गीय पिता ने हमें फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ के लिए नियुक्त किया, आशीषित किया, ताकि हम उसकी तरह बन जाएं। उसने सहायता उपलब्ध कराई कि हमें से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत चुनाव के व्यक्ति के सामने बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जीवन, ताकि हम अपने पवित्र दिव्य दर्शन को के द्वारा नियुक्त कर सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ पिता परमेश्वर की जीवित सच्चाई और उसके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु, जिसके उच्चतम आनंद की योजना का और उसकी कुंजी उसे धरती
पर पुरवंतार यह थॉमस एसमॉनसन की दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पास उसके आशीषों की पूर्ति होने की सामर्थ्य का आनंद हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
प्यारे भाइयों बहनों, सम्मेलन की ये दो दिन शानदार रहे। हम प्रेरणादायक संगीत और संदूक संगीत प्रार्थनाओं द्वारा प्रेरित हुए। हमारी आत्माएं ज्ञान और सच्चाई के संदेश से मजबूत हुए। ईस्ट सुबह को हम सब मिलकर और हृदय से भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए प्रश्न है, जो कुछ मैंने इस सम्मेलन में सुना, महसूस किया, इसके कारण मुझ में परिवर्तन कैसे आएगा? आपका जवाब जो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सब्बत के दिन के विषय में आपकी अनुभूतियों और आपके व्यवहार की जांच करने का निमंत्रण भी देता हूं। मैं यशा के शब्दों द्वारा आकर्षित हुआ, जो सब्बत के दिन को आनंद का दिन कहता है। फिर भी मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या सब्बत वास्तव में आपके लिए और मेरे लिए आनंद का दिन है? बहुत साल पहले मैंने पहली बार सब्बत में आनंद प्राप्त किया था जब मैं एक व्यस्त सर्जन था। तब सब्बत व्यक्तिगत चंगाई का दिन बन गया था। प्रत्येक सप्ताह के अंत तक मेरे हाथ बार बार साबुन, पानी और ब्रश से रगड़ कर साफ करने से दुखने लगते थे। मुझे इस कठिन व्यवसाय में आराम लेने की जरूरत भी पड़ती थी। रविवार अति आवश्यक राहत प्रदान करता था। उद्धारकर्ता का क्या अर्थ था जब उसने कहा था, सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के लिए। मैं विश्वास करता था वह चाहता था कि समझें कि दैनिक जीवन की कठिनाइयों के परिस्थितियों में वास्तव में आराम करने के लिए, आत्मिक और शारीरिक नवीनीकरण का मौका देने के लिए सबत का दिन हमारे लिए उपहार था। परमेश्वर ने हमें ये विशेष दिन शारीरिक और आत्मिक राहत के लिए दिया है, मनोरंजन या दैनिक श्रम से राहत करने के लिए नहीं। यूनानी भाषा में सबत का अर्थ है विश्राम। सबत का उद्देश्य संसार की सृष्टि में अस्तित्व में था, जब छह दिन के श्रम के बाद प्रभु ने सृष्टि के कार्य से विश्राम किया था। जब बाद में उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी हम इस पवित्र दिन को रखने के लिए सबत के दिन को स्मरण रखें। बाद में सबत मिश्र के दासों से इज़राइल की मुक्ति को याद में मनाने जाने लगा। शायद हम सबसे महत्वपूर्ण सबत हम हमेशा के अनुबंध के रूप में दिया गया था। यह निरंतर स्मरण कराता है कि प्रभु अपने लोगों को पवित्र करेगा। इसके अतिरिक्त अब हम यीशु मसीह के प्रायश्चित की याद में सबत दिन प्रभु भोज में भाग शामिल होते हैं। हम फिर अनुबंध करते हैं कि हम अपने ऊपर उसके नाम, पवित्र नाम को लेने के इच्छुक हैं। उद्धारकर्ता ने स्वयं सबत को प्रभु के रूप में पहचान कराई थी। यह उसका दिन है। बार बार उसने सबत का पालन रखने करने का या सबत का दिन पवित्र रखने के लिए कहता है। हमने ऐसा करने के लिए वादा किया है। हम सबत के दिन को पवित्र कैसे रख सकते हैं? जब मैं बहुत छोटा था, मैं उन सूचियों का अध्ययन करता था जो दूसरों ने सबत के दिन करने या ना करने के कामों के संबंध में बनाई थी। बाद में मैंने धर्मशास्त्र सीखा कि सबत को मेरा व्यवहार, मेरा नजरिया मेरे और मेरे स्वर्ग पिता के बीच में एक चिन्ह था। इस समझ के साथ मुझे करने और ना करने की सूची की जरूरत नहीं हुई। जब मुझे निर्णय लेना होता था कि कोई गतिविधि सबत के लिए उचित है या नहीं, मैं स्वयं से पूछता, मैं परमेश्वर को क्या चिन्ह देना चाहता हूं? यह प्रश्न दिन के बारे में मेरी पसंद को बिल्कुल स्पष्ट कर देता था। यद्यपि सबत के दिन सबत के संबंध में सिद्धांत प्राचीन काल से अस्तित्व में है, इन अंतिम दिनों में एक नए अनुबंध के भाग के रूप में वादे के साथ इसे नया कर दिया गया। इस दिव्य आदेश की शक्ति को सुने कि अगर तुम अपने आप को संसार से पूर्ण रूप से निष्कलंक रखोगे, तुम मेरे दिन पवित्र दिन को प्रार्थना के घर जाओगे और प्रभु भोज में भाग लोगे, क्योंकि वास्तव में यह दिन तुम्हारे लिए अपने कामों से विश्राम करने और परम प्रधान को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए नियुक्त किया गया है, और इस दिन तुम्हारा भोजन हृदय की एकाग्रता से पकाया जाए ताकि तुम्हारा उपवास परिपूर्ण हो, ताकि तुम्हारा आनंद भरपूर हो, और जितना अधिक तुम इन कामों को धन्यवाद के साथ आनंदित हृदयों और विभूति के साथ करते हो, पृथ्वी की परिपूर्णता तुम्हारी है। विचार करें यह कथन कितना महान है। पृथ्वी की पूर्णता उनसे वादा किया है जो सबत दिन को पवित्र रखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं यशा ने सबत को आनंद का दिन कहा था। आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि सबत को आपका व्यवहार आपको खुशी और आनंद की अनुभूति देगा? आपके गिरजे जाने, प्रभु में भाग लेने, सेवा करने की अपनी विशेष नियुक्ति में परिश्रम से कर्म करने, कौन से अन्य काम सबत को आपके लिए आनंद का दिन बना सकते हैं? उसके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए आप प्रभु को क्या चिन्ह दोगे? सबत परिवार के बंधनों को मजबूत करने का शानदार मौका उपलब्ध कराता है। यह निश्चित है कि हम परमेश्वर में से हम से प्रत्येक को उसके बच्चों के रूप में इंडो किए गए संतों के रूप में अपने पूर्वजों के साथ और वो अपने वंश के साथ मंदिर में मुबंध हुए परिवार के रूप में उसके पास वापस जाना चाहते हैं। हम सबत को आनंद का दिन बनाते हैं जब हम अपने बच्चों को सुसमाचार सिखाते हैं। माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारियां बहुत अधिक स्पष्ट हैं। प्रभु ने उन माता पिता के संबंध में कहा था जिनके पास सियोन में बच्चे हैं कि पाप माता पिता के सिरों पर होगा यदि वे अपने बच्चों को पश्चाताप का सिद्धांत जीवित परमेश्वर के पुत्र में यीशु मसीह में विश्वास बपतिस्मा और हाथों के रखने के पवित्र आत्मा का उपहार समझने की शिक्षा नहीं देते जब वे 8 वर्ष के होते हैं। सालों पहले प्रथम अध्यक्षता के ने उत्तम पारिवारिक समय के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने लिखा था, हम माता पिता से अनुरोध करते हैं कि वो अपने सर्वोत्तम प्रयासों से अपने बच्चों को सुसमाचार नियमों को सिखाएं और पालन पोषण करें जो उन्हें गिरजे के नखेट रखेगा। एक परिवार धार्मिक जीवन का मूलभूत आधार का है और अन्य कोई इस जगह को नहीं ले सकता या परमेश्वर से मिली इस जिम्मेदारी को पूरा करने में जरूरी कार्य को नहीं कर सकता। हम माता पिता और बच्चों को पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक घरेलू संध्या, सुसमाचार अध्ययन और निर्देशन और हितकर पारिवारिक कार्यकलाप करने की सलाह देते हैं। बेशक अन्य काम या कार्य कितने उचित या उपयुक्त क्यों ना हो, इन्हें दिव्य रूप से नियुक्त किए गए कर्तव्यों की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे केवल माता पिता और परिवार पर्याप्त रूप से संपन्न कर सकते हैं। जब मैं इस सलाह पर मनन करता हूं, मेरी इच्छा होती है काश मैं एक बार फिर से युवा पिता बन जाऊं। अब माता पिता के पास सबत और अन्य किसी दिन पारिवारिक समय को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत बढ़िया स्रोत उपलब्ध है। उनके पास LDS.org है, Mormon.org, बाइबल वीडियो, मॉर्मन चैनल, गॉर्बस गॉस्पल आर्ट लाइब्रेरी, फ्रेंड न्यू एरा, एंजाइन लायोना और बहुत कुछ। ये स्रोत माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही सहायक है। अन्य कोई काम माता पिता के धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने से बड़ा नहीं हो सकते।
As you teach the gospel,
You will learn more.
जब आप सुसमाचार सिखाते हो आप अधिक सीखते हैं। उसका सुसमाचार सिखाने में आपकी मदद करने का यह मौका प्रभु का तरीका है। उसने कहा था, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को राज्य के सिद्धांतों को सिखाओगे, तुम मेहनत से सिखाओगे कि तुम्हें भी अधिक पूर्णता से निर्देश दिए जाएं। सिद्धांत में सुसमाचार की इस व्यवस्था में हर उस बात में जो परमेश्वर के राज्य से संबंध रखती है। सुसमाचार का इस प्रकार का अध्ययन सबत को आनंद का दिन बनाता है। यह प्रतिज्ञा सब पर लागू होती है, चाहे परिवार का आकार कुछ भी हो, बनावट कुछ भी हो, या वो कहीं भी रहते हो। परिवार के साथ समय बिताने के अतिरिक्त आप सबत को परिवार इतिहास कार्य से वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के उन सदस्यों को ढूंढना और पाना जो पृथ्वी से जा चुके हैं, जिन्हें सुसमाचार स्वीकार करने का मौका नहीं मिला था जब वे यहाँ थे, अत्यंत खुशी ला सकता है। मैंने इसे स्वयं महसूस किया है। कई साल पहले मेरी पत्नी वेंडी ने अपने परिवार इतिहास खोज सीखने का निश्चय किया था। पहले पहले उसकी गति धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा इस काम पवित्र काम को करना बहुत आसान है, और मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। आपको भी अन्य देशों या फैमिली हिस्ट्री सेंटर में जाने की भी जरूरत नहीं है। घर पर ही कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण द्वारा आप उन मृत लोगों को ढूंढ सकते हैं जो अपनी रीतियां करवाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को खोज कर उन्हें आत्मिक कारावास से स्वतंत्र करके आनंद सबत को आनंद का दिन बनाए, दूसरों की सेवा करके सबत को दिन का आनंद बनाए, विशेषकर जो बीमार हैं, जो अकेले हैं या जो मदद चाहते हैं, उनको अच्छा महसूस कराने से आपको भी अच्छा महसूस होगा। जब यशा ने सबत को आनंद का दिन कहा था, उसने हमें यह भी सिखाया था इसे आनंद का दिन कैसे बनाना है। उसने कहा था, यदि तू मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और सबत को आनंद का दिन बनाए और प्रभु का सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर चले अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी बात ही ना बोले, तो तू प्रभु के कारण सुखी होगा। सबत को अपनी स्वयं की इच्छा ना करने के लिए अनुशासन, आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको ऐसा काम करना स्वीकार करना पड़ता है जिसे आप पसंद करते हो। यदि आप स्वयं को प्रभु के कारण सुखी करना चाहते हैं, तो आप इस दिन किसी अन्य दिन के समान व्यवहार नहीं करोगे। दिनचर्या के काम और मनोरंजक गतिविधियां किसी और भी दिन की जा सकती हैं। दसवां अंश पर विचार करें। हम अपनी आय का दसवां हिस्सा प्रभु को देते हैं। सबत को पवित्र रखने के लिए हम सात में से एक दिन उसके दिन के रूप में रखते हैं। इस प्रकार यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम उसके लिए धन और समय निकालें जो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है। परमेश्वर में विश्वास करने से सबत के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और सबत में विश्वास करने से परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब जबकि यह सम्मेलन समाप्त होने को है, हम जानते हैं कि हम जहां कहीं भी रहते हो, हम अपने पड़ोसियों, परिवारों और मित्रों के बीच विश्वासियों का उदाहरण बने। सच्चे विश्वासी सबत के दिन को पवित्र रखते हैं। मैं मरोनी के अलविदा याचना के समाप्त करता हूं, जो उसने बुक ऑफ मॉर्मन की पुस्तक के अंत में लिखी थी। उसे लिखा था, मसीह के पास आओ, उसमें परिपूर्ण बनो और स्वयं अपनी आध्यात्मिकताओं को अस्वीकार करो। यदि तुम अपनी सारी आध्यात्मिकताओं को अस्वीकार करोगे और परमेश्वर से अपनी योग्यता, बुद्धि और बल से प्रेम रखोगे, तब वह तुमको मसीह में पवित्र करेगा। प्रेम की गहरी अनुभूतियों के साथ मैं अपनी इस वार्ता को प्रार्थना, गवाही और आशीष के रूप में समाप्त करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
At the conclusion of this conference, we express heartfelt appreciation.
इस सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन सेवाओं की तैयारी में परिश्रम से अपना सहयोग दिया है। हम उन सब वार्ताकारों का जिन्होंने बोला और प्रार्थना की और जिन्होंने सुंदर संगीत उपलब्ध कराया है, अपने सलाहकारों और ऑर्गन वादकों का आभार प्रकट करते हैं। गायक मंडली इस सभा का समापन लॉर्ड आई वुड फॉलो दी गाकर करेगी। अंत में 70 के एल्डर कोइची आओयागे द्वारा समापन प्रार्थना दी जाएगी। इसके पश्चात ये सम्मेलन स्थगित हो जाएगा। हमारे स्वर्गीय पिता आपको आशीष दे और ठीक रखे जब तक हम फिर अक्टूबर में मिले।
our beloved Father in heaven.
हमारे प्रिय पिता स्वर्ग में हम आपके बहुत आभारी हैं उस महान बलिदान और पुनरुत्थान के लिए आपके पुत्र के यीशु मसीह के हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए आपकी दया के लिए और आपकी आशीषों के लिए पुनरुत्थान की आशीषों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी आशीषें हमारे संग रहें हम बहुत आभारी हैं उन सब वार्ताओं को सुनने के लिए उन महान शिक्षाएं और रेडियो से टेलीविजन से और दूसरे तरीके से इस जनरल कॉन्फ्रेंस में और हमारी मदद करें ताकि हम इस योग्य हो सकें कि हम इन शिक्षाओं को जो कुछ हमने सीखा है अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में लागू कर सकें थॉमस एस मॉन्सन को कृपया आशीष दीजिए 12 प्रेरितों को और अन्य दूसरे जनरल अधिकारियों को जितने भी पौरात्य दायक मार्गदर्शन और प्राचारक जो संत जो पूरे विश्व में जितने भी संत लोग हैं हम सब उनके लिए आभारी हैं आपके प्रेम के लिए आपके दया के लिए और आशीषों के लिए उस प्रायश्चित के यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं हम प्रार्थना करते हैं हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं विनम्रता के संग आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में आमीन
This has been a broadcast of the 180th
अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 188वीं अर्थवार्षिक महासम्मेलन था इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पद अधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा दिया गया था इसका प्रसारण बॉनेवर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया गया बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है